गाथा में जो अर्थ और उसका जो भाव है उसको तो हम कुछ काल के बाद देखेंगे। उसमें जो सिद्धांत बताए हैं क्रमबद्ध पर्याय के, उसकी सिद्धि करते हुए हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। हमारा यहाँ विषय जो कारण कार्य के रहस्य जो है वो जानने के लिए सबसे पहले में पहले जो कंडीशन आवश्यक है कि हमें सर्वज्ञ की सिद्धि करना है, सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप निश्चित करना है। सर्वज्ञ का निर्णय क्यों करना है? क्योंकि ये जो कारण और कार्य संबंधी जो बातें हैं, पर्याय उनका स्वरूप, पर्याय कैसी होती है, कहाँ से होती है, कौन उसका करता है, वो परिणमन की व्यवस्था क्या है, ये सारी बातें सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष जानकर बताई है। सर्वज्ञ भगवान कितना क्या जानते हैं मालूम है आपको? क्या क्या जानते हैं सर्वज्ञ भगवान, बोलो। तीन और तीन लोक और तीन काल को, आलोक को जानेंगे कि नहीं जानेंगे? हाँ, तो तीन लोक और तीन काल में क्या क्या बातें होती है, आलोक का सहित, आलोक के सहित तीन लोक और तीन लोक में क्या क्या बातें है? तो छह द्रव्य है, कितने हैं? और जाति अपेक्षा तो छह है, और संख्या अपेक्षा तो जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, उससे अनंत गुणा मालूम नहीं है? अभी तो ये पूरे एक घंटे भर विषय वहां चला सिद्धांत प्रवेशिका में। तो जीव अनंत है और पुद्गल उससे अनंतानंत गुणा है, कितना अनंत गुणा है? तो जीव राशि जो अनंत है उसको अनंत बार वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करते जाओ तब जो राशि आती है वो पुद्गल द्रव्यों की यानी परमाणुओं की संख्या होती है। जितनी परमाणुओं की संख्या है, वर्ग समझते हैं ना, स्क्वायर, जैसे दो का वर्ग है चार, चार का है सोलह, सोलह का है 256, और 256 का मालूम नहीं, पन्नठी नाम सुना है, 65536, उसका वर्ग बादल, उसका वर्ग इकट्ठी, नहीं सुना? ये श्रुत ज्ञान के पूरे अक्षर कितने हैं, इकट्ठी माइनस वन, पता नहीं ना हमको? तो ये तो वर्ग चार पांच बार के, दो का तो इतनी संख्या हो गई। यहां तो मूल राशि रखना है अनंत जीव, और उसको एक बार दो बार चार बार नहीं, अनंत बार अनंतानंत बार वर्ग करना है, तब जाके पुद्गल की संख्या आती है। जितनी पुद्गल की संख्या आती है उसके बार अनंतानंत वर्ग 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 करो तो जाके आते हैं तीन काल के समय। समय किसको कहना है, समय किसको कहते हैं, समय किसको कहते हैं हम, समय किसको, हाँ बोलो। हाँ तो काल को, ये काल का माप है ना, छोटे में छोटा काल का जो नाप है, व्यवहार काल जिसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं अभी कितने घंटे, एक घंटे प्रवचन चलेगा, तो ये घंटा क्या है, काल है। तो कैसे नापा हमने, तो 60 मिनट का एक घंटा होता है, मिनट कैसा मापा हमने, 60 सेकंड का एक मिनट होता है। तो सेकंड कैसे नापना, आप कहेंगे घड़ी में देख जाओ तो जान जाओगे, परंतु वो सेकंड ये तो कोई छोटे में छोटा नाप नहीं है काल का। काल का सबसे छोटा नाप जिसका दूसरा विभाग न हो सके, क्योंकि सेकंड का तो विभाग हो सकता है, ऐसी घड़ियां भी है, हमारे जो खगोल शास्त्रज्ञ है वो तो एक सेकंड का एक अब्जांश इतना भाग जानते हैं, उसके भेद करते अब्ज जितने, परंतु यहाँ तो सेकंड के तो असंख्यात भेद होते हैं। अभी आप सुन के आए ना, अभी वहां थे क्या, नहीं, तो एक सेकंड में होती है सैकड़ों आवली, हजारों आवली होती है, और एक आवली में होते हैं जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय, तो एक समय कितना छोटा होता है। तो ऐसे तीन काल के समय होते हैं अनंत, उससे अनंत गुणा क्या है, आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उन आकाश द्रव्यों के प्रदेश से भी अनंत गुणा एक द्रव्य में गुण। किस द्रव्य की बात चल रही है, कौन, सभी द्रव्यों, प्रत्येक द्रव्य में, सबके मिलकर नहीं, एक एक द्रव्य में, एक कालाणु लो या एक पुद्गल परमाणु है, धर्म द्रव्य है या अधर्म द्रव्य है या जीव द्रव्य है, उन सभी द्रव्यों में, आकाश द्रव्य में भी कितने गुण है, तो आकाश के जितने प्रदेश है उससे अनंत गुण है, और एक एक गुण में तो प्रत्येक समय में एक एक पर्याय चलती है, तो ऐसे तीन काल की पर्याय कितनी अनंत हो जाएगी। और एक एक पर्याय में जो शक्ति के अंश है उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद, नाम सुना है कभी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको कहेंगे, छोटे में छोटा नाप है किसका, शक्ति का अंश गिनने का नाप, उसका नाम क्या है, अविभाग प्रतिच्छेद, तो वो उससे भी अनंत गुणे हैं। तो ये सारी जो अनंत बातें हैं, अनंत द्रव्य, उसके अनंतानंत गुण, और उसके प्रत्येक गुण की तीन काल की पर्याय, और एक एक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद, एक समय में युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, केवल ज्ञान। तो सर्वज्ञ जब कहते हैं तो सर्वज्ञ क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, इसकी हमें तो थोड़ी एहसास हो जाता है। तो जब हम सर्वज्ञ कहते हैं तो महिमा किसकी आ रही है, हमें कितना जानते हैं उसकी, पदार्थों की महिमा आ रही है कि सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आती है, सचमुच आती है कि नहीं आती। जब हम सर्वज्ञ कहते हैं तो क्या क्या जानते हैं, तो हमारा लक्ष्य कहाँ जाता है, अरे ज्ञेयों की तरफ चला जाता है, परंतु केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतना जाना जाता है। और ऐसे पर्याय कितनी होती है केवल ज्ञान की, एक जीव के केवल ज्ञान की एक समय में एक पर्याय, अभी प्रकट हुआ किसी को केवल ज्ञान, तो ऐसी पर्याय निरंतर कब तक चलेगी, अनंत काल तक। तो जो अनंत काल अभी भविष्य में पड़ा है, किसी भी समय की बात करो, जितना भूतकाल बीत चुका है उससे अनंत गुणा भविष्य काल हमेशा पड़ा रहता है, अनंत गुणा। तो ये केवल ज्ञान की प्रत्येक समय में केवल ज्ञान नया होगा ना कि पुराना, जाना है अभी वो सब कुछ जान गए, उसी को जानते रहो, कि नया नया होता है, क्यों नया होता है बोलो, हर समय केवल ज्ञान नया क्यों होता है, उसके लिए कोई हमें, हमारे पास कारण चाहिए ना, बोलो बोलो, बैठकर बोलो, हाँ आपको इतना ही कहना है, केवल ज्ञान ये पर्याय है, और कोई भी पर्याय कितने काल तक टिकती है, एक समय, अभी हमने समय देखा ना कितना छोटा होता है, तो एक समय तक ही टिकती है, उसका काल ही एक समय का है, परंतु प्रवाह रूप से हम अनंत काल रहेगी, इसलिए क्या कहते हैं उसको, कहीं कहीं ध्रुव भी कह रही है, सिद्ध पर्याय को ध्रुव भी कहते हैं ना, ये अपेक्षावश कहते हैं, क्योंकि वो पर्याय 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 करते करते अनंत काल तक, अभी वो केवल ज्ञान कूट कर कभी वापस छद्मस्थ नहीं हो जाएगा, ये छद्मस्थ नाम सुना है? छद्म यानी क्या? छद्म का अर्थ क्या होता है? हाँ, मैंने छद्म का अर्थ पूछा, छद्मस्थ का नहीं। छद्म यानी आवरण, ढक्कन। आवरण में जो स्थित है, जैसे हम गृहस्थ कहते हैं, ग्रह में रहने वाले वो गृहस्थ, वैसे छद्म यानी आवरण में रहने वाले वो छद्मस्थ। तो कहाँ तक के जीव छद्मस्थ होते हैं, कौन से गुणस्थान तक के? हाँ बोलो बेटा, लास्ट। छद्मस्थ कौन से गुणस्थान तक के जीव को छद्मस्थ कहते हैं? 12वें गुणस्थान तक। और 13वें गुणस्थान वालों को क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। ख्याल में आई बात? तो ये जो हम सर्वज्ञ कहते हैं, तो जब हम सर्वज्ञ कहते हैं तो एक समय की केवल ज्ञान की बातें कितने कितने जानते हैं उसकी बात है, परंतु ये केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न कहां से हुई? कोई भी पर्याय कहां से उत्पन्न होती? द्रव्य का ही वो अंग है ना, द्रव्य की वर्तमान अवस्था को तो ही पर्याय कहते हैं। तो ये स्वभाव में से ही उत्पन्न होती, जहां जो स्वभाव में पड़ा है वही पर्याय में प्रकट होता है। क्या बाहर का ये पुस्तक पढ़ पर हमको ज्ञान होता होगा ना? आपको जो ज्ञान होगा या हो रहा है या स्मारक में आने के बाद, पढ़ने से हुआ कि नहीं हुआ, हमें निश्चित करना है, हमें निर्णय करना है। आपको क्या हुआ? घर में बैठे तो कुछ ज्ञान नहीं था, तो यहाँ प्रवचन सुन सुनकर आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पक्का मालूम नहीं है क्या? मालूम है आप क्या कहते हैं? ये जो आपको ज्ञान हो रहा है वो पढ़ने से, पुस्तक से, सुनने से तो होता है कि नहीं होता? ज्ञानावरण कर्म के, तो हम कर्म के अधीन हो गए ना। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ देखिए, किसी भी गुण की कोई भी पर्याय क्यों ना हो, द्रव्य की जो कोई पर्याय होती है वो उसकी स्वयं की अपनी योग्यता से होती है। द्रव्य कहते किसको है? द्रव्य की परिभाषा क्या है? हाँ, गुणों के समूह। और तत्वार सूत्र में क्या कहा है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुणों के समूह को तो हमने इसमें सीखा था प्राथमिक अवस्था में, परंतु सचमुच देखा जाए कि गुण और पर्यायों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं। तो पर्यायों का समूह है ना, गुणों का और पर्यायों का, क्योंकि गुण तो पर्याय में ही होते हैं, कोई गुण की हर एक समय कोई ना कोई अवस्था तो प्रकट है। तो द्रव्य में ऐसी कितनी अवस्थाएं हो सकती है? द्रव्य कहाँ, कब से है और कब तक रहता है? अनादि से अनंत काल तक द्रव्य। द्रव्य जब हम कहते हैं तो उसके अनादि से अनंत काल तक वो द्रव्य की विद्यमानता है। तो हर समय में उसकी कोई ना कोई पर्याय निश्चित है, निश्चित है, तभी तो हम उसको द्रव्य कह सकते हैं। यदि वो निश्चित न हो तो हम उसको द्रव्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहा है। तो द्रव्य को अपना द्रव्य है, अपना क्षेत्र यानी विस्तार है, कितने प्रदेशी है, उसका अपना काल यानी अनादि अनंत का काल है, उसका अपना भाव है यानी उसके गुण है। तो द्रव्य हम उसी को कहेंगे, जो अनादि से अनंत काल तक की पर्यायों का समूह है उसको हम द्रव्य कहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? उसकी एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है और वो पर्याय रूप परिणमने का धर्म प्रत्येक द्रव्य में किस समय किस पर्याय रूप से परिणमेगा, ये उसके अंदर उस द्रव्य के अंगभूत पड़ा है। हमें तो ये निर्णय करना है कि पर्याय यानी कार्य जो हो रहा है उसका कर्ता कौन है, निमित्त आया तब हुआ कि नहीं हुआ, ये निमित्त क्या होता है, पांच समवाय क्या होते हैं, ये सारी चर्चा करेंगे। परंतु ये सारा ही हमें किसने बताया है? तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया। सर्वज्ञ के हम एक समय की पर्याय को निश्चित करते हैं तो उनके स्वभाव को हम जानते हैं, उन स्वभाव की महिमा आती है। ये स्वभाव किसको कहना? केवल ज्ञान की पर्याय तो अभी नहीं उत्पन्न हुई, परंतु जो केवल ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव वो कब था? स्वभाव जो होता है ना वो अनादि से होता है, पर्याय होती है वो नहीं उत्पन्न होती है, स्वभाव तो अनादि से होता है। ये स्वभाव किसको कहना? स्वभाव की कुछ महिमा आप बताएंगे, दो चार शब्द उसके बारे में। स्वभाव कैसा होता है? हाँ, स्वभाव तो उसी को कहते हैं जो स्वयं सिद्ध होता है, स्वयं से बना हुआ नहीं कहा, स्वयं भू नहीं कहते, भू यानी कभी ना कभी हुआ है, समझ में आती बात। स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है यानी वो अनादि से है, किसी ने बनाया नहीं, वो है 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 है। दूसरी बात क्या होती है स्वभाव से, उसको अनादि अनंत होता है। पहला क्या कहा, स्वतः सिद्ध है, दूसरी बात अनादि अनंत होता है, तीसरी बात स्वभाव हमेशा परिपूर्ण होता है, स्वभाव में कोई खोट नहीं होती, जिसको असीम कहते हैं, मर्यादा रहित, उसको कहेंगे स्वभाव। जीव में जो जानना 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 उसका स्वभाव है, कितना जाना जानता है, सब कुछ जानता है। देखो सर्वज्ञ भगवान इतना सारा जानते हैं, इतने अनंत 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 बातें अभी हमने देखा है, तो ये सभी जो जानने योग्य क्या उतना ही केवल ज्ञान में स्वभाव है, क्या है? देखो बात ऐसी, कर्णान योग में और अन्य अन्य अनेक शास्त्रों में लिखी है कि केवल ज्ञान में इतनी शक्ति है कि ऐसे अनंतानंत लोकालोक होते तो भी केवल ज्ञान की प्रकट पर्याय में इतनी जानने की शक्ति पड़ी है। सुना है कभी? हमें तो ऐसा लगता है ज्ञान कितना है, गेय जितना है, गेय गेय लोकालोक है, इसलिए केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, उसकी उतनी प्रकट शक्ति, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आकाश में कौन सी शक्ति है, अवगाहना, कितने को अवगाहना देता है, विश्व के अनंत द्रव्यों को, तो सारे अनंत द्रव्य आकाश के कितने भाग में समा जाते हैं, जिसको हम लोकाकाश कहते हैं, पूरे आकाश का लोकाकाश कितवा भाग है बोलो, पूरे आकाश के सामने लोकाकाश कितना है, नहीं मालूम? अलोकाकाश कितने प्रदेश है और लोकाकाश कितने प्रदेश है? तो इसका अर्थ क्या, आकाश पूरे आकाश द्रव्य का अनंतवा भाग है लोकाकाश। क्या कहा? पूरे आकाश द्रव्य का अनंतवा भाग है लोकाकाश। तो आकाश में अवगाहना की इतनी शक्ति है कि अनंतानंत द्रव्यों को अवगाहना वो अनंतवे भाग में दे देता है। वैसे केवल ज्ञान में इतनी शक्ति है ज्ञान की कि उसके अनंतवे भाग में वो पूरे लोकालोक को जान लेता है, फिर भी प्रकट शक्ति इतनी पड़ी है कि अनंतानंत लोकालोक होते तो भी जान जाता। आपने अवधि ज्ञान के नाम सुना है ना, अवधि ज्ञान के तीन भेद नाम सुने हैं किसी ने, बोलो, देशावधि, परमावधि और इसमें से सबसे बड़ा कौन सा? हाँ, कोई परमावधि कहते, कोई सर्वावधि, बोलो एक कोई बताओ, परमावधि, क्योंकि नाम परम है ना, आप क्या कहते हैं, सर्वावधि, एक तो कोई बोल दो ना, तो एक का तो किसी का सही आ जाएगा। सर्वावधि ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, वो एक परमाणु तक जानता है, और परमावधि के लिमिटेड यानी जिसको सूक्ष्म की बात है ना, छोटे में छोटे कितने स्कंध तक जानता है परमावधि, तो कारमाण वर्गणा का जो स्कंध है वहां तक वो जानता है, कारमाण वर्गणा को जानता है, उसमें जो अनंत परमाणु होते हैं। तो ये जो सर्वावधि जो ज्ञान है या परमावधि बीज है, कितना है उसका क्षेत्र, कहां तक जानता है मालूम है आपको? अवधि ज्ञान कहते किसको है, जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित जानता है। अभी हमने देखा सर्वावधि कहां कितने द्रव्य तक को जानता है, जब द्रव्य कहते हैं ना अवधि ज्ञान का, तो मिनिमम पॉसिबल लेना यानी कम से कम कहां तक जानता है, नहीं समझा? जब चश्मे का नंबर निकालना है या आंखें ठीक है कि नहीं देखने के लिए हम जाते हैं, तो क्या दिखाते हैं, एक चार्ट दिखाते, देखा होगा ना, स्कूल में भी जांच करवाते, तो बोलते पढ़ो अभी यहां, तो हम पढ़ते पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन नहीं पढ़ सकते, तो जो पहली लाइन तक ही बड़े लेटर पढ़ सकता है, दूसरी लाइन नहीं पढ़ सकता है, उसकी आंखें सही है, तेज है, कि जो चौथी पांचवी लाइन तक पढ़ सकता है उसकी आंखें तेज है, जो छोटे में छोटे अक्षर पढ़ता है वो ज्यादा पावरफुल है उसकी आंखें, वैसे ही द्रव्य की मर्यादा जब कहते हैं, तो जो अवधि ज्ञान छोटे में छोटे स्कंधों को या एक एक परमाणु तक को जानता है, उसका अवधि ज्ञान पावरफुल, वो द्रव्य की मर्यादा। क्षेत्र की मर्यादा ने कितने क्षेत्र तक जानता है, तो ये सर्वावधि और परमावधि कितने क्षेत्र को जानते हैं मालूम है? असंख्यात लोक को। कितने? असंख्यात लोक। और उसका विषय क्या है? अवधि ज्ञान का विषय रूपी। रूपी पदार्थ कितने क्षेत्र में पाया जाता है? हाँ, एक लोक में, एक लोकाकाश में ही रूपी है, रूपी पदार्थ है, पुद्गल लोक में ही है, अलोक में तो कुछ है ही नहीं है। फिर भी सर्वावधि का क्षेत्र कितना है? असंख्यात लोक। अरे असंख्यात लोक में रूपी है ही नहीं, फिर भी उसमें इतनी शक्ति है कि यदि असंख्यात लोक तक रूपी होते तो वो जान लेता। ऐसे ही केवल ज्ञान में इतनी शक्ति है, हम अवधि ज्ञान को नहीं सिखा रहे, अपना विषय तो सर्वज्ञ की बात चल रही है। केवल ज्ञान में इतनी शक्ति है कि अनंतानंत लोकालोक होते तो भी एक समय की प्रकट पर्याय में वो शक्ति पड़ी। वो स्वभाव की शक्ति की बात नहीं है, जैसे हमें स्वभाव में हम केवल ज्ञान स्वभाव पड़ा है परंतु वर्तमान में हम क्षोभक्षम ज्ञानी है, वैसी बात नहीं है, प्रकट शक्ति की बात है। तो ये जो स्वभाव है हमने क्या क्या नक्की किया? एक तो स्वतः सिद्ध होता है, दूसरी बात अनादि अनंत होता है, तीसरी बात परिपूर्ण होता है, अमर्यादित होता है, उसके कोई मर्यादा नहीं होती। कितना जाने उसके लिए कोई मर्यादा, स्व को भी जाने, पर को भी जाने, पूर्व को भी जाने, भविष्य को भी जाने, काल की भी मर्यादा नहीं है, ना कोई अंतर की डिस्टेंस की मर्यादा है, यहाँ का ही जानते वहाँ का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो होता है असहाय। असहाय का अर्थ क्या है? दीन दुबला असहाय, ऐसा होता है नहीं। हाँ, किसी अन्य सहायता की, मदद की, मदद के अन्य निमित्त की वहाँ जरूरत नहीं है। जैसे क्षोभक्षम ज्ञानी है तो वहाँ तो इंद्रियों की निमित्त बना बनता है मति ज्ञान में, और फिर प्रकाश है जो अन्य अन्य जो निमित्त बनते हैं, ऐसे केवल ज्ञानी में कोई नहीं है। ये है स्वभाव। तो जब हम स्वभाव निश्चित करते हैं तो हम भी जीव द्रव्य है, हमारे पास भी ऐसा ही स्वभाव अभी वर्तमान में विद्यमान है। देखो, हम केवल अन्य को जानने के लिए, शास्त्र के शब्द के जानने के लिए हम यहाँ नहीं पढ़ रहे। प्रत्येक कोई भी विषय हो तो वहां से हम अपनी आत्मा तक कैसे पहुंचे, कैसे विचार करें, किस तरह से उसको हम अप्लाई करें, लागू करें, ये बात सोचने की बात है। तो यहाँ हम जो सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित कर रहे हैं, एक बात कि ये जो सारा जिनागम है उसके मूल बताने वाले सर्वज्ञ भगवान हैं। तो सर्वज्ञ पहले में पहले कैसे होते हैं? तो पूर्ण वीतरागी ही सर्वज्ञ होते हैं, क्योंकि सभी मत वाले कहते कि हमारे भगवान सर्वज्ञ है। कहते ना, आप तो सभी दर्शनों का अभ्यास कर रहे हैं, छह छह दर्शनों का अभ्यास कर रहे हैं, तो सभी कहते हमारे भगवान यही सच्चे भगवान है और वही आपको मुक्ति का मार्ग दिला देंगे। परंतु उसमें सही कौन है, ये निर्णय हमें अपने बुद्धि से करना आवश्यक है। तो सर्वज्ञ वही हो सकता है जो पहले वीतराग, परिपूर्ण वीतराग हो, जो पूर्ण निर्दोष है वही निरावरण हो सकता है। क्या कहा? निर्दोष किसको कहते हैं? वीतरागी को निर्दोष कहते हैं। जो पूर्ण निर्दोष है, पूर्ण निर्दोष कौन से गुणस्थान में होता है, यानी पूर्ण वीतरागता कौन से गुणस्थान में आती है? बारहवें, हाँ ग्यारहवें में भी आती है, अंतर्मूर्त तक रहती, फिर वो दोबारा नीचे के गुणस्थानों में जाता है। इसलिए जो कायम के लिए वीतरागता हुई है अनंत काल तक, ऐसे कहाँ होगी? बारहवें गुणस्थान में। अंतर्मूर्त के बाद वही जीव सर्वज्ञ अवस्था उसके प्राप्त होती है। तो ये जो सर्वज्ञ है कि नहीं, इसकी भी सिद्धि करेंगे अभी हम। मूल में मूल सर्वज्ञ भगवान को क्यों जानना है? क्यों ये सारा जो उपदेश है, ये जो सारे कथन है, वो मूल में सर्वज्ञ भगवान ने बताए है। तो जब हम उनका स्वरूप समझेंगे तो हम अपने सर्वज्ञ स्वभाव को समझेंगे, इसलिए हमें जानना है। दूसरी बात, ये जो सभी मति कहते कि हमारे भगवान भी सर्वज्ञ है, तो हमें निश्चित करना है कि वे सर्वज्ञ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए उसकी पूर्व अवस्था है वीतरागता। तो क्या सर्वज्ञता तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगी? आप लोग कितना जानते हैं, हम मुंह देख के तो नहीं बता सकते, परंतु कोई जीव वीतरागी है कि नहीं, परिपूर्ण वीतरागी है कि नहीं, ये उसके बाह्य अवस्था के द्वारा हम निश्चित कर सकते। मुनिराज भी जहाँ निष्परिग्रही है, और यहाँ सर्वज्ञ कहलाने वाले क्या वो परिग्रह सहित है कि निष्परिग्रह है, कि कैसे काम क्रोध के परिणाम उनके है कि नहीं है, वो तो समझ सकते हैं ना बाहर में, उनका बाह्य स्वरूप तो समझ सकते हैं। तो यहाँ तो हमें सर्वज्ञ का अंतर बाह्य स्वरूप निश्चित करना है। देखो अरिहंत भगवान की जो बात है ना, तो अष्टपाहुड़ हमारा अभी वहाँ चल रहा है बम्बई में, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई है कि अरहंतों को हमें निश्चित करना है। कैसे? नाम स्थापना द्रव्य भाव। नाम सुने कभी आपने? किसके नाम है? निक्षेप। ये निक्षेप और नय में क्या अंतर होता है? हाँ बोलो। हाँ, नय तो ज्ञान में लगते हैं या वही कथन में लगते, और निक्षेप ज्ञेय पदार्थों में लगते। क्या कहा? नय तो ज्ञान की यानी ज्ञान का भेद है, वो श्रुति ज्ञान का अंश है नय, और निक्षेप किसमें लगते हैं? वस्तु में। क्यों? लोक व्यवहार के लिए। जैसे नाम रखा हमने, अपने बच्चे का नाम सर्वज्ञ रखा, हम अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो वो नाम बुलाने के लिए लगते हैं, तो उसको हम निक्षेप, नाम निक्षेप से हम उसको सर्वज्ञ कह सकते हैं। बात सही है ना? वैसे स्थापना, जिन मंदिरों में जो हमारी मूर्तियां हैं उसमें हमने भगवान की स्थापना की, कहीं महावीर की कहां सिमंदर भगवान की, ये तो स्थापना होती है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य निक्षेप की वस्तु को भूत और भविष्य पर्यायों के द्वारा उसको अभी वर्तमान में पहचानना, उसको हम द्रव्य निक्षेप में लेते हैं। द्रव्य तो वही का वही है। और भाव निक्षेप में क्या लेता है? लेते हैं उसकी वर्तमान की जो कोई अवस्था है उसी रूप से उसको हम लेते हैं। परंतु यहाँ जो अष्टपहाड़ में बिल्कुल अद्भुत बात बताई है कि अरिहंत भगवान को नाम स्थापना द्रव्य और भाव से निश्चित करो। तो निश्चित करो यानी वो निक्षेप वाले निक्षेप नहीं चलेंगे यहाँ पर, निश्चय से आप निश्चित करो। तो जो मुनिराज अरिहंत अवस्था रूप परिणमित हुए हैं उन्हीं को अरिहंत कहना, ये नाम अरिहंत है। क्या कहा? हमने अरिहंत नाम दिया अपने बच्चे को, वो बात नहीं है। जो मुनिराज स्वयं 13वें गुणस्थान रूप हो गए, अभी उस रूप अवस्था में हो गए हैं, उन्हीं को नाम अरिहंत कहेंगे। तो स्थापना अरिहंत किसको कहना? ये भगवान की मूर्ति में हमने अरिहंत की स्थापना कही, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। वो तो स्थापना निक्षेप, वो लोक रूढ़ी के लिए हम भगवान की जाके पूजा करें, प्रक्षाल करें, वंदना करें, उसके लिए वो स्थापना निक्षेप है, उसकी बात नहीं है। अरिहंतों की अरिहंत में स्थापना यानी क्या करना है? तो आपने 20 प्ररूपणा सुनी होगी ना, गुणस्थान मार्गनास्थान। नाम तो सुने, का अभ्यास भी हुआ है आपका? अभ्यास भी हुआ है? तो 20 प्ररूपणाओं के नाम कौन बोलेंगे? उसमें तो एक प्ररूपणा है एक गुणस्थान की, 14 तो है मार्गणा, 15 हो गए। और अन्य कौन सी प्ररूपणाएं हैं? जीव स्थान कहो या जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, एक हुआ। ये दोपहर को विषय चलने वाला है यहाँ पर। एक है तो गुणस्थान है, 14 तो मार्गणा है, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये जो 20 प्ररूपणाएं हैं अरिहंत भगवान को इनसे निश्चित करना, यह है स्थापना। क्या कहा है उसमें? स्थापना अरिहंत की स्थापना क्या है? तो अरिहंतों का गुणस्थान निश्चित करना। कौन से गुणस्थान होते हैं अरिहंतों के? 13वां 14वां संयोग केवली अयोग केवली गुणस्थान में अरिहंत होते हैं। अरिहंतों का जीव समास कौन सा है? आप तो पढ़े हो ना जीव समास। जीव समास में कौन से भेद होते हैं? एक इंद्रिय के दो सूक्ष्म बादर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेन्द्रिय, संज्ञी, असंगी, सभी के पर्याप्त अपर्याप्त। तो इसमें अरिहंतों को कहाँ फिट करना? क्योंकि हम अरिहंतों का स्वरूप जानना चाहते हैं, हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, तो वे देखो जिन कुंदकुंदाचार्य ने समय सार में 50 से 55 गाथाओं में कहा, क्या कहा? मैं गुणस्थान नहीं, मैं मार्गणास्थान नहीं, मैं जीव समास नहीं, मैं वर्ग नहीं, वर्गणा नहीं, स्पर्धक नहीं, सब सब कुछ बता दिया। उन्हीं कुंदकुंदाचार्य ने अब यहाँ कहते हैं 20 प्ररूपणाओं में अरिहंत भगवान को निश्चित करो, उसको कहेंगे स्थापना अरिहंत। तो अरिहंतों का जीव समास कौन सा है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्ता, अभी तो हम इतना कहते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जीव समास हुआ, पर्याप्ति कितनी होती है अरिहंतों के? अभी ये पर्याप्ति क्या है मालूम नहीं ना हमें, तो हम कैसा निश्चित करें? हमें तो सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करना है, जिनको हम नमस्कार करते, देखो उनका भी और अपना भी निश्चित करना पड़ेगा। अपना भी जीव समास, अपनी पर्याप्ति, अपने पास यहाँ कितने प्राण, ये सब निश्चित करना पड़ेगा। हो तो सर्व अरिहंतों की कितनी पर्याप्ति है? तो 6 पर्याप्ति। अरिहंतों के प्राण कितने होते हैं वो तो समझो। हाँ भाई साहब ने बता दिया 10, आप कोई, आपकी क्या राय है? अरिहंत भगवान के प्राण है कि नहीं, पहले में पहले ये निश्चित करेंगे। आप क्या कहते हैं? घबराओ ना, कुछ भी बताओ ना, भूल है तो सुधर जाएगी, फोकट की सुधर जाएगी। क्यों? देखो प्राण किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य होता है उसको प्राण कहते हैं। हमें आपको तो 10 प्राण है, क्योंकि हमें इंद्रिय प्राण है, इंद्रियों के द्वारा हमारा क्षोभम ज्ञान चलता है। केवल ज्ञानी कितने इंद्रियों के द्वारा जानते हैं? तो उनके 5 इंद्रिय प्राण नहीं है। 3 बल प्राण में से मन बल प्राण नहीं, क्योंकि मन के द्वारा नहीं जानते। तो 2 बल प्राण है, काय बल, वचन बल। वचन बल है कि नहीं? वचन योग भी है और देवध्वनि भी खिरती है, तो उनके 2 प्राण तो काय बल, वचन बल। उनके श्वासोश्वास होता है कि नहीं होता? अरिहंत भगवान के श्वासोश्वास है कि नहीं है? हाँ हाँ, श्वासोश्वास है, क्योंकि हमने देखा था अंत में जाके श्वास का निरोध करते हैं, वचन का निरोध करते हैं। तो श्वासोश्वास प्राण, ये आपको नक्की करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा करना नियोग का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि आप विद्वान बन के जाओगे। देखिए एक बात ऐसी होती है, करना नियोग के जानकार भी बहुत है, और आप विद्वान अगर करना नियोग के बारे में कोई भी गलतियां करते हैं तो आपके द्रव्यानियोग के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, डाउट लगे लोग कि ये तो करना नियोग जानते ना, ये क्या हमें द्रव्यानियोग सिखाएंगे? यहां इतनी गलती करते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ गलती होगी, ये बात ऐसी होती। और दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, परंतु हमें उसमें कुछ आवश्यक ज्ञान, जो बेसिक जिसको कहते उतना आवश्यक है। तो हम यहां देख रहे थे कि प्राण कितने होते, तो श्वासोश्वास प्राण भी अरिहंतों के है। उनके आयु है कि नहीं है? आयु है ना, अभी 14वें तक आयु भी होगी। तो 4 प्राण है किसके? कौन से अरिहंत के? 13वें वाले के। और 14वें वाले के तो 1 ही प्राण है आयु नाम का, अभी उसके डिटेल तो दोपहर में ले लेंगे हम, यहाँ उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो अपना घंटा तो उसी में चले जाएगा। हमें तो सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है। बात क्या, यहाँ कुनकुंद आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि स्थापना अरिहंत, यानी ये सारे जो हमने अभी देखे हैं, जीव समास कौन सा, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग और 14 मार्गणा, कौन से गति वाले हैं, कितने इंद्रिया वाले हैं, कौन से काय वाले हैं, वो सब निश्चित करना पड़ेगा। तो काय मार्गणा से अरिहंत भगवान को कौन सी काय है, हमने बाकी तो अभी सभी में डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अरिहंत भगवान के काय मार्गणा से कौन से काय वाले हैं, कोई बताएगा हमें? यहाँ परम औदारिक। हाँ आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमें काय मार्गणा के भेद नहीं मालूम ना। काय मार्गणा में तो 6 भेद होते हैं। कौन से? 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय। त्रस काय, तो हम काय मार्गणा से ये त्रस काय वाले होते, औदारिक काय वाले नहीं होते, वो तो योग होता है औदारिक काय योग, समझ में आया ना? तो अभी हम ये करना नियोग को छोड़ देंगे यहीं पर। यहाँ तो इतनी बात है कि स्थापना करना, यानी अरिहंत भगवान को ये 20 के 20 प्ररूपणा अप्लाई करके उसमें लागू करना, ये है अरिहंतों की ये स्थापना, अरिहंत इसको कहेंगे। नाम अरिहंत, जो स्वयं अरिहंत रूप अवस्था में परिणमित हुए उनको नाम अरिहंत कहेंगे। जो इनके ये सारे उनका गुणस्थान कौन सा, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, ये सब निश्चित करना, वो कहेंगे अरिहंतों को हमने उसमें स्थापित किया, तो ये स्थापना अरिहंत है। द्रव्य अरिहंत में लेना, हम तो द्रव्य में तो पूर्व भविष्य की पर्याय लेते हैं, परंतु यहाँ पर अष्टपहर में जो द्रव्य अरिहंत कहा है, अरिहंत भगवान को द्रव्य ने शरीर की अपेक्षा से निश्चित करना, जैसे उनका परम औदारिक शरीर है, उसकी कोई छाया नहीं होती है, ना उनको कोई कवलाहार होता है, ना कोई पसीना होता है, ना कोई मलमूत्र विसर्जन होता है, ये जो सारी बातें हैं ये निश्चित करना, इसको द्रव्य अरिहंत का। और भाव अरिहंतों में उसके अरिहंतों के जो गुण है, अनंत चतुष्टय आदि, उसको भाव अरिहंत। तो हमें तो ये सर्वज्ञ का स्वरूप सभी ओर से निश्चित करना है। ये जो हमें जो सारे ही आगम प्राप्त हुए हैं वो सर्वज्ञ भगवान ने बताए हुए, और सर्वज्ञ की वाणी सबसे उत्कृष्ट प्रमाण है। प्रमाण समझते हैं ना आप, या तो न्याय शास्त्र के आप विद्यार्थी हो, तो उसको सिद्ध करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए हमें अन्य किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आजकल क्या लोग पूछते हैं, हमें वैज्ञानिकों ने ये बात सही है, इसी पद्धति से इसको सिद्ध की है, इसलिए हम सर्वज्ञ की बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आपको भी मिलते होंगे ऐसे लोग, ये वैज्ञानिक तो ऐसे कहते हैं और सर्वज्ञ तो ऐसे कहते हैं, हम किसकी बात मानेंगे? वैज्ञानिक किसको कहते हैं? साइंटिस्ट, जिसकी खोज पूरी नहीं हुई। वो खोजते हैं, बनाते थोड़ी है। जिनकी खोज पूरी नहीं होती है उनको साइंटिस्ट कहते हैं, और जिनके खोजने के लिए कुछ नहीं बाकी रहा उनको सर्वज्ञ कहते हैं। तो किसकी बात माननी हमें, ख्याल में आते? हम तो, हमारा विश्वास तो उसी बात पर होता है जो साइंस ने सिद्ध करके बताया है, परंतु सर्वज्ञ तो उसी को कहते हैं कि उनके प्रमाण के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। धवला ग्रंथ में ये बात बार बार आती है कि इसके लिए क्या सिद्ध, ये सूत्र इटसेल्फ सिद्ध करता है। आपके यहाँ जयपुर में सूरज उगता है तो कौन से टॉर्च लगा के देखते हैं आप, कौन से प्रकाश में देखते सूर्य को? हाँ, सूर्य तो इतना बड़ा प्रकाश है, उसके लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो जो सर्वज्ञ की वाणी है वही इटसेल्फ, उसमें ही, वो स्वयं में ही प्रमाणभूत है, उसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो सर्वज्ञ ने जो बताई बातें हैं, द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, वो सबसे पहले में पहले इसलिए हमें सर्वज्ञ की स्वभाव की पहचान करनी है, सर्वज्ञ का स्वरूप देखना है। अब दूसरी बात है, लोग कहते हैं आप सर्वज्ञ की इतनी महिमा करते हो, परंतु सर्वज्ञ है भी ये तो निश्चित करो ना पहले। हम कहते सर्वज्ञ होता ही नहीं है, आपने सिद्धि की होगी ना, यहाँ आपकी हो गई सर्वज्ञ की सिद्धि? तो कोई कहता है सर्वज्ञ ही नहीं होता, कहाँ नहीं होता, यहाँ की कभी भी, कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। अब नहीं है कि भूत भविष्य में नहीं है, नहीं तीनों काल में नहीं होता, तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे आप? हाँ, तो हम उनको कहेंगे आप ही सर्वज्ञ हो गए। क्यों? आपने कहा कि तीन लोक में सर्वज्ञ नहीं होते, और आपने कहा कि तीन काल में नहीं होते, तो जो तीन काल और तीन लोक को जानते हैं हम उसी को सर्वज्ञ कहें ना, तो कहने वाला ही सर्वज्ञ हो गया। क्यों भाई? जो ऐसा कहता है होते ही नहीं है तो उसने तो जानकर बताया होगा, तो हम कहेंगे आप ही सर्वज्ञ हो। दूसरी बात, हम जो सर्वज्ञ की बात करते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि हमारे भगवान सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ का स्वरूप तो एक जैसा होना चाहिए। कोई कहते है हमारा सर्वज्ञ है और उसका स्वरूप कुछ अलग है, और कोई अन्य मति कहता है हमारा भगवान सर्वज्ञ है उसका स्वरूप अलग है, तो हो नहीं सकता, एक कोई तो होना चाहिए और एक ही कोई उस कमी से सच्चा होना चाहिए। तीसरी बात, उसके वाणी के अनुसार हम उसकी सिद्धि कर सकते हैं। जो सर्वज्ञ की वाणी होती है वो कहीं पूर्वापर विरोधता सहित नहीं होती। अन्य मतियों में कहीं तो हिंसा का पोषण करते हैं और कहीं अहिंसा का उपदेश देते हैं, कहीं कुछ बातें करते हैं, कहीं कुछ बातें करते हैं, तो ये तो उनकी जो वाणी है, उनके जो शास्त्र है, वो तो बिल्कुल पूर्वापर विरोध से भरे हुए हैं, तो ये उनकी सर्वज्ञ की वाणी नहीं हो सकती। अनेक जो अन्य बातें हैं, हम आगम से कोई कहेंगे कि हम सर्वज्ञ होते हैं, आगम से सिद्ध करो, तो प्रथमान योग के अनेक आपने कहानियां सुनी है, वहां भी हम सर्वज्ञ की सिद्धि कर सकते हैं। तीर्थंकर जितने हुए हैं, तीर्थंकरों की वाणी में जो कोई बातें आई है, करणान योग से हम सिद्ध करते हैं, कर्णान योग में तो एक एक लिटी में, एक एक पन्ने में इतने सारे सिद्धांत बताए हैं कि उसके द्वारे ये सिद्ध होता है, ये किसी कल्पित यानी किसी कल्पना की ये बातें नहीं है, ये सर्वज्ञ ने बताई हुई बातें हैं। तो इस पर से भी हम सर्वज्ञ की सिद्धि कर सकते हैं। देखो प्रथमान योग में भी देखना, आदिनाथ के काल में उन्होंने ये मारीची जीव 24वां तीर्थंकर होगा ये बात बताई। कितने काल पश्चात की बात बताई उन्होंने, लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर पश्चात होने वाले जीव के, तो बीच की सारी बीच वाली सभी पर्याय जानी होगी तभी तो बताए कि नहीं बताए। और ऐसा भी होता है कि कितने ही जीव अनादिकाल से निगोद में पड़े, कौन से नित्य निगोद में, वहां से बाहर ही नहीं निकले, वहीं पर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कर आए, ये बात भी उन्होंने प्रत्यक्ष जानकर बताई। तो ये जो सारी बातें हैं इससे हम सर्वज्ञ की सिद्धि कर सकते हैं। कोई कहेंगे अभी सर्वज्ञ यहां नहीं है, अरिहंत भगवान वर्तमान में भरत में नहीं है, विदेह में है कि नहीं हमें पता नहीं है, तो अरिहंत भगवान अभी वर्तमान में है ऐसा कोई सिद्ध कर सकता है? क्योंकि विदेह की बातें तो हम जान नहीं सकते। आपके पास ऐसा कोई सिद्धांत है कि जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ना वर्तमान में भी अरिहंत भगवान होने ही चाहिए? हाँ, अनुमान ज्ञान, अनुमान के लिए कोई सिद्धांत? हाँ बोलो। हाँ हाँ बहुत अच्छा, बैठिए। आपने कहा 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही है, तो वो अरिहंत हुए बिना तो जाएंगे नहीं, इसलिए अरिहंत होने ही चाहिए। परंतु उसमें भी 6 महीने का अंतर पड़ता है, तो क्या 6 महीने में कोई अरिहंत नहीं होगा? हो सकता है। हाँ आपका कहना है हो सकता है, आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ, पर 14वें गुणस्थान में भी 6 महीने का अंतर पड़ सकता है, ये मैं आपको बताऊं। 13वें गुण, देखो एक होती है सांतर मार्गणा, एक होती है निरंतर मार्गणा, नाम सुना है कभी? कुछ गुणस्थान ऐसे होते हैं जिसको कहेंगे निरंतर गुणस्थान। निरंतर का अर्थ क्या है? ये नाना जीव है, अनेक जीवों की अपेक्षा ये बात हो रही है। मिथ्यात्व गुणस्थान ऐसा है कि इस गुणस्थान में हमेशा ही कोई ना कोई ने, कोई ना कोई ने अनंत जीव रहेगे रहेगे और रहेगे। ये मिथ्या तो गुणस्थान में कोई जीव न हो ऐसा कब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। चौथा गुणस्थान ऐसा है कि जिसमें हमेशा ही, हमेशा यानी निरंतर, एक समय का भी अंतर पड़े बिना उसमें हमेशा ही कोई ना कोई जीव चौथे गुणस्थान में होगे होगे और होगे। पांचवा गुणस्थान भी निरंतर गुणस्थान है, छठा सातवां गुणस्थान भी निरंतर है, और 13वां गुणस्थान निरंतर है। दूसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में समयों का अंतर पड़ सकता है। एक समय से लेकर असंख्यात वर्षों तक एक भी जीव 4 गतियों में से दूसरे गुणस्थान में न हो ये बन सकता है, तीसरे गुणस्थान में न हो ये बन सकता है। 6-6 महीने तक कोई भी जीव 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में न हो, 13वें 14वें में न हो ये बात बन सकती है। 11वां 12वां भी ले लेना उसमें, परंतु 13वां गुणस्थान ऐसा है कि जो निरंतर गुणस्थान है, नाना जीवों की अपेक्षा बता रहे कि 13वें गुणस्थान में हमेशा ही कोई ना कोई जीव होगे और होगे ही। अरे लाखों, अधिक से अधिक लाखों में संख्या जाती है ना, 8 लाख और कुछ, तो ये तो हमेशा ही अरिहंत भगवान होगे ही, हमेशा ही तीर्थंकर भगवान भी विराजमान होगे। इस विश्व में एक समय भी ऐसा कभी नहीं होगा अनादि अनंत काल में कि जहां किसी भी तीर्थंकर की विद्यमानता न हो, किसी भी अरिहंतों की विद्यमानता न हो, ऐसा बन नहीं सकता। जैसे मोक्ष मार्ग निरंतर है, वैसे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने वाले अरिहंत जो हम आप तक कहते हैं उनको, वे भी हमेशा विद्यमान होंगे ही। हमें तो डर लगता है ना, अरे हम नहीं पढ़ेंगे तो ये जैन धर्म का क्या होगा, डूब जाएगा। किसी को ऐसी चिंता नहीं होती कि हमारा क्या होगा, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा किसी को चिंता नहीं है। किसकी चिंता पड़ी है? अरे इसको नहीं पढ़ेंगे तो जैन धर्म का क्या होगा। ये तो जैन धर्म तो अनादि से है और अनंत काल तक शाश्वत रहेगा ही, उसको अपनाने वाले समय दृष्टि भी रहेंगे, उसको बताने वाले भगवान भी होंगे और मुनिराज भी हमेशा होंगे। हमारे वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में कुछ अभी उनकी जो जिसको कहते ना अल्पता हो गई है मुनिराजों की और समय दृष्टियों की, और यहाँ अरिहंत भगवान अभी वर्तमान में नहीं है, इसका अर्थ वो कहीं भी नहीं होते, ये नहीं होते, ये हमेशा ही रहेंगे। ये तो हमने सर्वज्ञ की बात यहाँ देखी है। और भी सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाले हम अनेक सिद्धांत आते हैं शास्त्र में। आपने तो सामान्य गुण पढ़े, प्रमेत्व गुण क्या बताता है? हाँ बोलो, प्रमेत्व गुण की परिभाषा क्या है? मैं आप ही से पूछ रही। हाँ हाँ हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान के विषय हो, ज्ञान का विषय हो। कौन से द्रव्य की बात चल रही है? ये प्रमेत्व गुण कौन से द्रव्य में है? सभी द्रव्य में। क्यों? हाँ, सामान्य गुण है तो सभी द्रव्य में है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य किसको कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्य। तो ये जो गुण पर्यायवान द्रव्य जो है, यानी गुण की जो द्रव्य की जो अनादि अनंत पर्याय है और उसके जो सारे अनंत गुण है, उन सभी को जानने वाला प्रमेत्व गुण है ना वो। तो ये प्रमेत्व गुण के कारण ये सभी किसी न किसी ज्ञान के विषय हो गए। किसी न किसी ज्ञान में कौन से ज्ञान आ गए? मति श्रुत अवधि मन परे केवल। तो केवल ज्ञान तो सबको जानता ही है। इसका अर्थ प्रमेत्व गुण के कारण सभी द्रव्य और सभी उनकी पर्याय किसी न किसी यानी केवल ज्ञान में तो हर समय प्रमेय रूप हो ही रही है। तो जहाँ प्रमेत्व गुण के कारण भगवान यानी केवल ज्ञान में वो झलकती है, तो वहाँ उनको जानने वाला केवल ज्ञानी भी हमेशा विद्यमान होगा ही होगा। निमित्त रूप से हम देखते हैं ना, प्रमेत्व गुण के कारण झलकते हैं, तो झलकते हैं तो वो ज्ञान यानी वो जानने वाला जीव भी वहां विद्यमान होगा ना, कि केवल ज्ञान ही नहीं और यहाँ प्रमेत्व गुण के कारण किसी में झलक ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ख्याल में आती बात कुछ? प्रमेत्व गुण क्या बताता है? कि द्रव्य खाली अकेला द्रव्य झलकेगा कि उसके गुण पर्याय भी झलकेगी? तो होती है तभी झलकेगी कि नहीं होने वाली झलकेगी? तो भविष्य की भी पर्याय निश्चित है। क्यों? वो द्रव्य का अंग है। द्रव्य हम उसी को कहते हैं जो अनादि अनंत पर्यायों का समूह है, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। हमने अभी तक द्रव्य को ही जानने में भूल की, इसलिए सारे आगे के प्रश्न हमें अनुत्तरित रह गए। हम जब द्रव्य को सही रूप से जानेंगे तो ये द्रव्य यानी गुणों के और पर्यायों के समूह को हम द्रव्य कहेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है ना, द्रव्य तो शुद्धा शुद्ध गुणों का पर्यायों का पिंड है, शुद्धा शुद्ध पर्यायों का पिंड है। तो ये जो अनादि से लेकर अनंत काल की पर्याय है, जो द्रव्य में ही सुनिश्चित है, उसको जानने वाला है वो सर्वज्ञ है। और हमें क्या लगता है, भगवान ने हमारी भविष्य की बातें जान ली तो हम पराधीन हो गए? प्रश्न पूछते हैं ना लोग, उसके भी उत्तर सब मिलेंगे हमें। मूल में हम यहाँ सर्वज्ञ की बात, सर्वज्ञ के पहले स्वरूप की सिद्धि करेंगे और फिर उसको हम उसकी सर्वज्ञ की भी सिद्धि करते हैं। यहाँ पर देखो, कांजी स्वामी तो हमेशा कहते थे, उन्होंने वो सर्वज्ञ शक्ति में भी बताया है कि एक अरिहंत भगवान है या सिद्ध भगवान है, केवल ज्ञानी है। तो एक केवल ज्ञानी किस किस को जानता है? अभी हमने देखा सभी द्रव्यों के, सभी गुणों की, सभी पर्याय युगपत एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं। तो एक केवली भगवान है, तो वहां अनंत केवली भगवान विराजमान है कि नहीं है? तो वो अनंत केवल ज्ञान की पर्यायों को एक साथ जान रहे कि नहीं जान रहे? अनंत केवल ज्ञानी है, उनकी सबकी अनंत काल की पर्याय भी जान रहे, अनंत काल की केवल ज्ञान की पर्याय। तो एक केवल ज्ञान की पर्याय या अनंत अनंत केवल ज्ञानियों की भी पर्याय झलक रही है कि नहीं झलक रही? तो जैसे आप मंदिरों में देखते ना, एक यहाँ आईना है, दर्पण है, और उनके यहाँ और बीच में मूर्ति विराजमान है, तो कितनी मूर्तियां दिखती हमें? अरे इसका तो उसमें प्रतिबिंब होता है, उसका फिर इसमें, फिर इसमें, कितने अब देखते जाओ तो उतने सारे प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब। तो केवल ज्ञान की एक पर्याय में कितने केवल ज्ञान झलकते हो, तो वो केवल ज्ञान कैसा होगा? उसकी महानता आती है ना, ये ज्ञान का स्वभाव है, इतना जानने का ज्ञान का स्वभाव है, उसमें कोई मर्यादा ही नहीं है। हम जितना इमेजिन कर सकते हैं उसमें हम अपना उपयोग लगा सकते हैं। तो केवल ज्ञान की और अपने स्वभाव की महिमा आएगी तो ही उपयोग अपने अंदर में चला जाएगा, अंदर में नहीं अपनी आत्मा में स्थिर होगा, यानी अपने को ज्ञान में अनुभव तभी होगा। आत्मा का अनुभव तभी हो सकता है जब सर्वज्ञ का हम निर्णय करें। सर्वज्ञ ने केवल ज्ञान का निर्णय तो मतिशुद्ध ज्ञान की पर्याय में होता है। क्या कहा? केवल ज्ञान का निर्णय करने के लिए केवल ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। अरे उसका निर्णय हुए बिना तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। तो हमें पहले में पहले सर्वज्ञता का निर्णय करना है। केवल ज्ञान का निर्णय अभी हमारे अल्प ज्ञान की पर्याय में ही होने वाला है, और ऐसा निर्णय हुए बिना उपयोग अपने आप को अपने आत्मा को नहीं पहचानता, यानी उसकी ओर नहीं मुड़ता है। यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान के नाम पर उपयोग को खींचा तानी करने की प्रैक्टिस होती है बहुत जगह। क्यों? क्योंकि हमें आत्मानुभव करना है और उपयोग अंदर ले जाना है, परंतु स्वभाव की महिमा आए बिना उपयोग कुछ आपकी नहीं सुनता, आपके चाह की नहीं सुनता, आपके राग की नहीं सुनता है। ज्ञान की पर्याय है वो स्वयं अपनी महिमा आए तो अपनी ओर चलिए। बाहर अभी कोई बैंड बजता हो तो हमारा सारा उपयोग बाहर, अरे क्या हो रहा है, कोई झगड़ा करता है तो हम वहाँ उपयोग चला जाएगा। जहाँ जिसकी रुचि है, जहाँ जिसकी महिमा आती है, वहाँ उसका उपयोग चला जाता है। और उपयोग अपने आप में स्थिर हो जाए, ये कैसे हो सकता है? कि अपने स्वभाव की अपूर्व महिमा आए बिना ये बात नहीं हो सकती। तो हम सर्वज्ञ का जो निर्णय करते हैं वो सर्वज्ञ के लिए नहीं करते, अपने लिए करते। जिस समय सर्वज्ञ भगवान का यानी सर्वज्ञता का निर्णय हो जाए उसी समय आत्मा का अनुभव हो जाएगा। उसके लिए अन्य कुछ अन्य बातें करनी नहीं, यही तो पुरुषार्थ है, निर्णय करना यही तो पुरुषार्थ है। और ये कैसे होता है वो हम आगे बढ़ेंगे, इसी के बारे में हम देखेंगे। यानी ये शास्त्र की बातें केवल सुनने से निर्णय नहीं होता है। जब सर्वज्ञ स्वभाव को जानकर अपने आप की महिमा आती है और उपयोग अपने में स्थिर होता है, अंतर में एकाग्र होता है, तब हम उसको सर्वज्ञ की पहचान हुई कहेंगे, महिमा आई कहेंगे, निर्णय हुआ कहेंगे। समय सार में भी लिखा है ना कि स्वानुभव से इसकी परीक्षा करना, स्वानुभव से निर्णय करना। यानी स्वानुभव हुआ सर्वज्ञता की निर्णय करते करते, तो सर्वज्ञ की भी सिद्धि हुई और हमें जो हमने शास्त्र में पढ़ा उसकी भी सिद्धि हो गई। बहुत से अन्य भी बातें हैं कि हम देखें, जाति स्मरण से होता है, अवधि ज्ञान के द्वारा ये सारे सर्वज्ञ की सिद्धि हो सकती है। अभी ये तो बात हो गई सर्वज्ञ की सिद्धि की, अभी उसके संबंधी भ्रांतियां भी हम देखेंगे। उसके पहले एक प्रश्न आया था, कल भी पूछा था किसी ने, उसको हम देख के फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कल हमने जो देखे थे बात कि स्त्री पर्याय में मुक्ति नहीं होती, ये तो सबको विदित है, क्योंकि जो स्त्री पर्याय है उसके तो पांचवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ हो सकता है, परंतु उसके तो आगे का यानी छठे सातवां गुणस्थान मुनि बनने का या श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ उस जीव के उतनी योग्यता नहीं है। तो यहाँ प्रश्न ऐसा है, क्षेत्र काल गति लिंग आदि सूत्र में जो उपचार से पूर्व भव के भावलिंग जिसके साथ मोक्ष हुआ उसके पुरुष सिद्ध स्त्री सिद्ध आदि भेद बनते हैं, ये आपने सुना होगा। जैसे जल सिद्ध कहते हैं, जल से ऊपर से जिसने सिद्ध हुए, सुना है नाम कभी? क्षेत्र सिद्ध में आते ही आते हैं। जल से नहीं, कोई मुनिराज है, अभी कोई पूर्व भव का वैरी देव उनको उठाकर पटक देता है समुद्र में और वहीं पर वो श्रेणी मानकर सिद्ध हो जाते, तो उनको जल सिद्ध कहेंगे। तो यहाँ तो लिंग की बात उठाई है कि किसी को पुरुष सिद्ध कहते हैं और किसी को स्त्री सिद्ध कहते हैं, अभी उनका प्रश्न तो आगे है। फिर सम्यक दृष्टि को द्रव्य और भाव पुरुष ही कहेंगे तो फिर सिद्ध के भेद उपचार से भी न बन सकेंगे, अतः कैसे? कल जो मैंने बात की थी मल्लीनाथ के बारे में, और ये ऐसा भी रूल बताया था जो सम्यक्त्व के साथ अन्य भव में चला जाता है। अब जो नरक में जाता है ना वो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक्त्व के साथ नरक में जाने वाला, उसके तो नरक वाला जो नपुसक वेद है द्रव्य से भी और भाव से भी वो होता है। अन्यत्र जो सम्यक दृष्टि जीव जन्मते हैं वो नियम से, द्रव्य से और भाव से पुरुष वेदी ही होते हैं। ये द्रव्य और भाव क्या होता है उसको पहले समझेंगे। द्रव्य पुरुष यानी वो जो शरीर का चिन्ह है, शरीर से जो पुरुष है तो उसको हम कहेंगे द्रव्य पुरुष। परंतु भावों में वेरिएशन हो सकता है, जैसे मनुष्य और तिर्यंचों में, जिसको कहते हैं भाव वेद। भाव वेद यानी उनके कौन से कर्मों का उदय है, किसी के स्त्री वेद का उदय है, किसी के पुरुष वेद का, किसी के नपुंसक वेद का। ये कब बनता है, मिथ्यात्व अवस्था में। जो सम्यक्त्व के साथ जन्मा है उसको तो द्रव्य से तो पुरुष है ही है, भाव से भी उसका पुरुष वेद है। परंतु जो मिथ्या दृष्टि है उसके तो तीनों वेदों में से कोई वेद हो सकता है। तो जो कोई मिथ्यात्व के साथ जन्मा है, मान लेते हैं स्त्री वेदी है भाव से हो और द्रव्य से पुरुष है, ऐसा जीव बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर मुनिराज भी हो गया और फिर श्रेणी भी चढ़ी, तो नवे गुणस्थान तक वेद का उदय होता है। तो उसके नवे गुणस्थान में वह वेद का अपगत वेदी हो गया, अभी उसका उदय भी मिट गया और वैसा जीव जाके अभी सिद्ध बन गया, तो उसको क्या कहेंगे, स्त्री सिद्ध। भाव वेद की अपेक्षा पूरे नवे गुणस्थान तक ही भाव रहता है, वो आगे भाव यानी वैसे परिणाम रहते हुए बात नहीं है। जो भाव वेद कहते हैं वो भी नवे गुणस्थान तक के कहते हैं, वहां वेद जो कर्म है, कौन से कर्म का भेद है वेद, कौन, हाँ चारित्र मोनिय का नौ कषाय कर्म है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, जो भावों के नाम है वही कर्मों के नाम है। तो ये कर्म का उदय वहां नवे गुणस्थान तक है, वहां कोई, ये तो ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा तो उसने पांचवें गुणस्थान में ली है, वहां कोई उनके परिणामों में खोट है या कोई कार्यों में ऐसी कोई विचित्रता होती ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी केवली ने वहां कर्मों का उदय वहां जाना है, तो इसलिए कहेंगे नौवे गुणस्थान तक वो वेद का सद्भाव है, बाद में नहीं है। तो उस अपेक्षा से ये बन सकता है। बाकी जो जन्म से ही सम्यक दृष्टि है वो पुरुष ही है, उसका भाव भी पुरुष वेद ही होता है और उस जीव के तो मोक्ष जाने में तो कोई बात नहीं। परंतु जो तीर्थंकर जन्मते हैं, किसी भी भाव से स्त्री वेदी, भाव से भी स्त्री वेदी होगा तो वो तीर्थंकर नहीं हो सकता। भाव से स्त्री वेदी वाले कोई ऐसे भी तीर्थंकर हमने देखे हैं कि जन्म से तो गर्भ जन्म कल्याणक तो नहीं हुआ है, तीन कल्याणक वाले हैं या दो कल्याणक वाले हैं, परंतु वे भी भाव से अगर स्त्री हो गए तो उनको उस भाव में तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं होगा। ये बात होती। इस पर कोई प्रश्न है क्या, आगे बढ़ेंगे? हाँ चलो आगे बढ़ते। अब सर्वज्ञ के बारे में जो भ्रांतियां है ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि देखो ये जो क्रमबद्ध पर्याय है, जो क्रम नियमित जो शब्द आया है शास्त्र में, आगम में, कहाँ आया है क्रम नियमित शब्द, कहाँ आया है? समयसार गाथा 308 से आगे आया है ना, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमान जीव एव, और अजीव के बारे में भी यही बात बताई है। तो वो क्रम नियमित का जो भाषांतर क्रमबद्ध हुआ है, तो उसके लिए अभी पहले से कुछ अन्य बातें कोई विद्वान या कोई कहते आए हैं और अभी ये उनको लगती नई बात बाहर से आई है, कांजी स्वामी ने कुछ नई बात निकाली ऐसा कहते हैं, और इसके लिए जो सर्वज्ञ का स्वरूप है उसको ही उल्टा पुल्टा सिद्ध करना चाहते हैं। ये उसके क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानना है, उस सिद्धांत को नहीं मानना है, इसलिए सर्वज्ञ का स्वरूप नहीं, नहीं वो तो भूत और वर्तमान की तो जानते, भविष्य की जानते ही नहीं, ऐसे सर्वज्ञ के ऊपर ही उन्होंने उनके स्वरूप में ही बिगाड़ कर दिया। यह है सर्वज्ञ के बारे में भ्रांतियां, उनकी तो भ्रांति चलती ही है चलती, और वैसा उपदेश भी देते रहते हैं। तो इसके बारे में सही क्या है वो जानना हमारे जवाबदारी है, भ्रांतियां क्या है और उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, ये विषय अभी यहाँ तीसरे प्रकरण में चलेगा। देखो आप यदि ये प्रकरण पढ़ेंगे ना, एक एक प्रकरण पढ़ के भी आएंगे, तो इसके अलावा भी मैं अन्य जो कोई पॉइंट्स कभी बता, जैसे आप, हमने नाम स्थापना द्रव्य भाव से अरिहंत की बात की, ऐसे अन्य भी बहुत सारे बिंदु आपको मिलेंगे, तो जब आप पढ़ के आएंगे तो और उसमें भी आपको कोई शंका हो सकती है, वो आप भी हमें पूछ सकते हैं, मैं भी उस पर आपको प्रश्न पूछ सकती हूँ। क्योंकि किताब केवल पढ़ के सुनाना ये तो क्या आसान बात है, तो उसमें हम और गौर से अधिक चिंतन उसके बारे में कर सकते हैं। तो यहाँ जो अभी जो भ्रांतियाँ चलेगी, ये 23 पृष्ठ है ना आपके पुस्तक में, वहां से ये सारी भ्रांतियां और उसका निराकरण कर दिया है, वो तो बाद हम कल पढ़ेंगे, अभी अपना समय हो गया है। आप ये भ्रांतियां और उसका निराकरण पढ़कर आइए, शाम को हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।